हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 12 अध्याय के 6ठे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनः क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुम उपचक्र में। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखना चाहा। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं, अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रोध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेश पूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणनन्दिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यहाँ पर से पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि ने एक्सप्लेन किया था कृष्ण का स्वरूप काल के रूप में, है ना, कि कैसे अलग अलग लोकों में अलग अलग जीवों में काल जो है अलग अलग तरह से चल रहा है ना। ब्रह्मा जी का काल की जो चक्र अलग चल रहा है, एक मच्छर का काल का चक्र अलग चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर कोई काल के प्रभाव में है। हाँ, और कृष्ण भी कह रहे हैं कालोस्मि मैं ही काल हूँ, है ना। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी हो, हाँ, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूँ ब्रह्मा, या कोई कीड़ा क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि सारे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। हाँ, सारे कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन कर्माणि निर्दहति त किंतु च भक्ति भाजाम। लेकिन एक कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है, हाँ, भक्ति भाजाम, भक्ति करके, है ना। तो ये मैत्रेय ऋषि ने पिछले अध्याय में एक्सप्लेन किया था, और अब मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि करने का जो है प्रक्रम किया, उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करनी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या जनित वस्तुएं बनाई, है ना, अपना स्वरूप भूल गया व्यक्ति, मृत्यु का भय आ गया, नहीं और मिथ्या स्वामित्व का भाव आ गया। ऐसे उन्होंने ये वस्तुएं बनाई जिसमें जिसके वशीभूत होकर जीव इस संसार में रह सके। नहीं लेकिन और मैत्रेय ऋषि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने बनाया तो सही लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा बनाकर, है ना। उन्होंने बनाया, उनको लगा है क्या बना दिया, मतलब उनको पता था कि जीव इसके प्रभाव में आकर नाना प्रकार के दुख झेलेगा, हाँ, और नाना प्रकार के अकदर्य जो न खाने योग्य पदार्थ है वो भी खाएगा, है ना। लोग मांस इत्यादि खाते हैं, उनको खाने वाली चीज थोड़ी ना है, लेकिन अविद्या के प्रभाव में आकर मिथ्या अभिमान से ग्रसित होकर जीव नाना प्रकार के उल्टे सीधे पदार्थ खाता है। तो ब्रह्मा जी ने ये सब बनाने के बाद दोबारा भगवान का ध्यान किया अपने आप को शुद्ध करने के लिए, है ना, ताकि अब वो जीवों की सृष्टि कर सके उन्होंने, है ना। तो उन्होंने चार ऋषियों को, चार बालकों को उन्होंने जन्म दिया, सनक, सनातन, हाँ, सनंद और सनत कुमार। तो चार कुमार को जन्म दिया और चार ज्ञान की जो चार शाखाएं हैं वो उन्होंने उनको प्रदान किया। उन्होंने जो चार सिद्धांत है, सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप, ये चार उन्होंने प्रदान किए कि चलो आप इन ये जो अलग अलग ये ज्ञान की जो सिद्धांत है आप इसको और विस्तार करो, इसका प्रचार करो और साथ साथ में आप सृष्टि के निर्माण में सहायता करो। लेकिन जो चार कुमार थे वो बहुत ही प्रबुद्ध थे, बहुत उन्नत थे और भगवान के भक्ति में शुरू से ही लीन थे वो, है ना। जैसे सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से ही भगवान की भक्ति में लीन थे, नहीं, उसी प्रकार चार कुमार भी बचपन से ही भगवान की, पैदा होते ही भगवान की भक्ति में लीन थे वो। तो जब ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ जाकर सृष्टि बढ़ाने में मेरी हेल्प करो क्योंकि मेरा काम है सृष्टि बनाना, तो चारों पुत्रों ने बोला कि देखिए हम ये काम नहीं करना चाहते, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, है ना, हमें आप भक्ति करने दीजिए, आप किसी और को लगा दो इस काम में। तो ब्रह्मा जी को एकदम गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी की सेवा थी सृष्टि बढ़ाना, तो उनकी सेवा में ये बाधा आ गई, तो ब्रह्मा जी को एकदम बहुत तेज गुस्सा आ गया और आंखें एकदम लाल हो गई उनकी, ब्रह्मा जी की। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने वो अपने आप को रोक लिया उन्होंने। लेकिन जो उनको क्रोध आया, वो क्रोध आने के प्रभाव हुए जो आप आगे के श्लोकों में आप पढ़ोगे, है ना। और प्रभुपाद भागवतम में बता रहे हैं कि अगर क्रोध आ जाए शरीर में तो पूरा शरीर जो है वो दूषित हो जाता है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जो पहले ऋषि मुनि थे वो क्रोध करने से बचते थे, है ना, उनमें बहुत ताकत होती थी, उनमें बहुत कुछ कर सकते थे वो, लेकिन फिर भी वो क्रोध नहीं करते थे। जैसे विश्वामित्र हैं, है ना, वो चाहते तो राक्षसों को मार भी सकते थे अपने तप से, लेकिन मारने के लिए क्रोध करना पड़ेगा तो क्रोध से सारी तपस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए वो महाराज दशरथ के पास आए और उनसे भगवान राम को मांगा उन्होंने कि क्षत्रिय का स्वभाव है क्रोध करना, वो क्षत्रियो का स्वभाव है अनुशासन लेके आना, तो भगवान ये काम करेंगे, उनका यश भी बढ़ेगा और मैं भी क्रोध करने से बच जाऊंगा, मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी, है ना। तो अगर क्रोध आ जाता है तो जो हमारी पिछली तपस्या है उसमें नुकसान हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए यथासंभव क्रोध करने से बचना चाहिए हम लोगों को। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि क्रोध आखिर आता कैसे है। तो जो क्रोध है वो एक्चुअली में रजोगुण का लक्षण नहीं है। क्रोध किसका लक्षण है? क्रोध तमोगुण का लक्षण है ना? रजोगुण का लक्षण क्या है? काम, है ना? रजोगुण जो है वो काम से, जो रजोगुण का लक्षण काम वासना है। सो काम वासना मतलब मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, नहीं तो वो रजोगुण से उत्पन्न है। और कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। सो जो क्रोध है वो काम से उत्पन्न होता है, और काम जो है वो रजोगुण का लक्षण है। और जो क्रोध है, क्रोध हालांकि उत्पन्न रजोगुण से होता है ना? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। जो क्रोध है वो उत्पन्न रजोगुण से होता है, लेकिन क्रोध में आवेश में व्यक्ति सही गलत भूल जाता है ना? जैसे महाराज दक्ष थे, महाराज दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे है ना, तो वहां पे शिव जी भी थे, एक सभा थी चल रही थी, तो वो सभा में ब्रह्मा जी, शिव और अनेक साधु महात्मा सब उपस्थित थे। तो दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया तो सारे खड़े हो गए, सिर्फ दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा जी और शिव जी, है ना? तो ब्रह्मा जी तो चलो बड़े हैं, पितामह, तो उनका बुरा नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन शिव जी ने उनको सम्मान नहीं दिया तो बुरा मान गए इस बात से, हाँ, और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और सब लोगों ने उनको बोला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और लेकिन वो क्या किया, उस सभा को छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी बैठे हैं, कम से कम उनका ही सम्मान कर लेते, लेकिन ब्रह्मा जी की भी उन्होंने परवाह नहीं की, तो एक तरह से उनका अपमान किया उन्होंने, दक्ष ने, वो सभा को छोड़ के जब गए तो, है ना? तो जब क्रोध आता है तो क्रोधात बुद्धि सम्मोहा, दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। और 14वें अध्याय में भगवद गीता के, जहाँ पे भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन जो गुण है उनकी चर्चा कर रहे हैं ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तो बता रहे हैं कि सतोगुण के क्या लक्षण है, रजोगुण के क्या लक्षण है, तो फिर वो तमोगुण के लक्षण की भी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि जो सही गलत का विवेक नहीं रहता उसके अंदर, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति उसको ठीक से निर्णय नहीं कर पाता। तो रजोगुण में जो व्यक्ति स्थित है उसको तमोगुण में जाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना? लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी तो वो ऊपर के लोकों में है, नहीं, ऊपर के लोकों में, और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, है ना, और अधो गच्छन्ति तामसा। तो कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, तो जो जो ऊपर के लोकों में जा रह रहे हैं, तपालोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वहाँ पे तो सत्वगुण में लोग स्थित होने चाहिए, तो ये ब्रह्मा जी रजोगुण में कैसे हैं? नहीं, ऊपर के लोकों में तो सत्वगुण में होने चाहिए थे ना, तो ब्रह्मा जी रजोगुण में कैसे प्रभावित हुए जा रहे हैं बार बार से, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, कई बार हो चुका है ऐसा ही उनके साथ में, नहीं? तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी गुण शुद्ध अवस्था में मौजूद नहीं है, सब मिक्स है। और कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवद गीता में कि ये जैसे हम लोग एक बड़े बर्तन में अलग अलग सब्जियां डाल के पकाते हैं, तो कभी कोई सब्जी उबल के ऊपर आ जाती है, कभी कोई सब्जी उबल के आ जाती है ऊपर, कभी कोई सब्जी ऊपर आ जाती है। इस प्रकार भौतिक जगत में जो भी लोग स्थित हैं वो सब ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध सत्व में है या कोई शुद्ध रजा गुण में है, कोई बिल्कुल तमोगुणी है, मिक्सचर चलता है ना। तो अलग अलग प्रभाव उसका कभी कभी देखने को मिलता है जिस प्रकार का संग करेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण कार्य में लगे हैं और सृष्टि रजोगुण के प्रभाव में होती है, इसलिए ब्रह्मा जी हालांकि ऊंचे लोकों में है फिर भी रजोगुण के प्रभाव में है वो, है ना। तो सो ब्रह्मा जी को गुस्सा तो आया लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो लेकिन मन में क्रोध आना ही अपने आप में गलत है बेसिकली, है ना। सो हम यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे, डिवोटीज के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्रोध आना चाहिए। तो एक ऋषि थे भृगु ऋषि, है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, है ना। आपने सुना है ना कि भागवतम के दशम स्कंद में उसका वर्णन आ रहा है कि भृगु जो ऋषि हैं वो गए, उन्होंने चेक करना था कि कौन सा व्यक्ति, प्रभु आप हाथ धो के आओ, कौन सा व्यक्ति जो है वो किस गुण के प्रभाव में है, कौन श्रेष्ठ है। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो पिता एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि बेटा आएगा तो भैया कम से कम प्रणाम तो करेगा, नहीं आदर देगा, तो चुपचाप जाके खड़े हो गए भृगु ऋषि। तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को, अबे तू आया है कम से कम भैया नमस्ते तो कर दे, नमस्ते डैडी, नमस्ते नहीं किया ये क्या कर रहा है। तो कुछ बोला नहीं, मन से अपमान किया। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि तीन तरह से अपमान हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। कि तो भृगु ऋषि ने अपमान कर दिया ब्रह्मा जी का, मन से कुछ बोला नहीं, कुछ गलत बात भी नहीं बोली लेकिन आदर भी नहीं दिया, इसी से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बड़ा गुस्सा आया, फटाफट चले गए वहां से भृगु ऋषि, और जाके कहाँ पहुंच गए, शिव जी के पास। शिव ने कहा ओ भैया, तो उठे गला लगाने के लिए, अगर रहने दो भैया, तुमने रात फाक पोती हुई है, दूर से बात करो, ठीक है भाई हैं हम, लेकिन दूर से बात करो, पास मत आओ, राख वाख मली हुई है, पहले नहा लो पहले भैया। और शिव जी को आ गया गुस्सा, त्रिशूल उठाया मारने के लिए भागे, तो वचन से अपमान कर दिया। तो पार्वती जी ने रोका, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई है आपका, बड़ी मुश्किल से उनको रोका। ऐसे ही एक बार पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया था, तो शिव जी रोक रहे थे उनको, तो रुक ही नहीं थी, फिर शिव जी उनके नीचे जमीन पे लेट गए। तो जैसे ही पार्वती जी का पांव छुआ शिव जी से, एकदम क्रोध शांत हो गया उनका, नहीं। और लेकिन इस प्रसंग को लोग कैसे दिखाते हैं कि देखो शिव जी पार्वती जी के चरणों में रहते हैं, वो पूरे इतने बड़े बड़े फोटोएं बना के रखी हुई हैं कि शिव जी नीचे लेटे हैं और पार्वती जी आराम से शिव जी के ऊपर डांस कर रही हैं, बिल्कुल उल्टा तरह से उसको दिखा रहे हैं, जबकि पार्वती जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं। जैसे ही शिव जी को उनके चरण स्पर्श हुए, तुरंत उनको बहुत ग्लानि हो गई थी उनको, है ना। ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है शिव जी के ऊपर, अपने पति के ऊपर डांस करके, तो लोग बिल्कुल गलत तरह से चीज़ों को दिखाते हैं, है ना। इसीलिए एक भक्त से सुनना चाहिए, कभी भी अभक्त से जो है कोई भी प्रसंग हो कभी नहीं सुनना चाहिए, मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। अगर किसी अभक्त से मायावादी से सुनोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो वहां से भागे भृगु ऋषि, तो पहुंच गए श्वेत द्वीप, वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में पहुंचे, वहां पे भगवान लेटे हुए थे आराम से, उसमें लक्ष्मी जी की उन्होंने गोद में सिर रखा हुआ था, रेस्ट कर रहे थे। गए धार से लात मारी उनके वक्ष पे तो एकदम विष्णु जी और पार्वती लक्ष्मी जी खड़े हो गए, अरे चोट तो नहीं लगी आपके पैर पे, हमसे गलती होगी, आप आए थे, हमें पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था सम्मान में, मतलब अपनी गलती ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो फिर भृगु जी ने ये निर्णय कर लिया कि विष्णु अर्थात कृष्ण ही सर्वोच्च है। हाँ, और यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि इस घटना के होने तक जो भृगु ऋषि हैं वो शुद्ध भक्त नहीं थे, इस घटना के बाद वो शुद्ध भक्त बने, है ना। अगर वो शुद्ध भक्त होते तो क्या जाके भगवान विष्णु के वक्ष पे लात मारते कभी भी ऐसा नहीं करते, नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे उस समय तक, इसलिए वो ऐसा कर पाए। हाँ, सो इस प्रसंग से और कुमार जो ये प्रसंग है, तो ब्रह्मा जी ने हालांकि कुमारों को जन्म दिया था, उनका अधिकार था, उनका अधिकार था कि जो बच्चे हैं उनका कहना माने, इसीलिए जब उन्होंने कहना नहीं माना तो उनको गुस्सा आया, लेकिन वास्तव में वो क्रोध उचित नहीं था, है ना। इसी प्रकार जब भक्तों के समाज में हम देखते हैं कि लोग प्रचार करते हैं, नहीं, और जब प्रचार करते हैं तो लोग भक्त बनते हैं और नए भक्त बनते हैं, तो जो प्रचारक है कई बार उसको लगता है ये मेरे भक्त हैं ये मैंने बनाया भक्त, तो उस पे एक तरह का स्वामित्व का भाव आ जाता है, नहीं, हाँ, ये मेरा डिवोटी है, ये उसका डिवोटी है। हाँ, तो कई बार भक्त बोलते हैं जिनको वो प्रचार कर रहे होते हैं कि वो फलानी जगह मत जाओ, वो भक्त से मत सुनो, नहीं, कई बार ये बात करते हैं। ये बात इसलिए आती है, स्वामित्व के भाव के कारण आती है। और कई बार प्रचारक ये भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सम्मान मिलेगा, भाई भक्त बनाया है, टाइम लगाया है, तो सम्मान मिलना चाहिए, नहीं, अब मिलना भी चाहिए सम्मान। और कई बार भक्त उम्मीद करते हैं कि जो नए भक्त हैं जिनको उन्होंने भक्ति में जोड़ा है उनकी बात मानेंगे और उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे, है ना, लेकिन कई बार होता है कि जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा हो जाते हैं, मैं तुझे कहा था भागवत में आया कर, आता ही नहीं, तो गुस्से में आ जाते हैं वो, नहीं। सो हमें ये समझना चाहिए, और प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है कि, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इस बात को बहुत जोर दिया है कि भक्त बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत करके वो जो भक्त है वो हमारी संपत्ति नहीं बन रहे हैं, वो जो भक्त हैं वो गुरु की प्रभुपाद की संपत्ति बन रहे हैं, है ना। और क्योंकि जो भक्त है वो प्रभुपाद गुरु और कृष्ण की संपत्ति है, अगर हम लेश मात्र भी सोचेंगे कि मेरी संपत्ति है तो वो चोरी के समान हो जाएगी, वस्तु किसी और की है, नहीं, और मैंने सोच लिया मेरी है ये वस्तु, तो चोरी हो गई ना। इसीलिए प्रभुपाद ने ये कई बार भक्तों को बताया कि जो भी सम्मान उनके जो शिष्य हैं उनको देते हैं वो तुरंत अपने गुरु को और कृष्ण को ट्रांसफर करते हैं। तेन त्यक्तेन भुज्यता, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मुझे सम्मान इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं अपने गुरु का प्रतिनिधि हूँ, है ना, इसलिए सम्मान जो आपने दिया वो मेरा नहीं है, मैं तो एक गधे की तरह हूँ जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की विग्रह रखा हुआ है, तो लोग प्रणाम भगवान विष्णु को कर रहे हैं, कृष्ण को, लेकिन गधा कई बार सोचता है कि मुझे कर रहे हैं प्रणाम नहीं। सो अगर हम ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भक्त है वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, है ना, संपत्ति में और जिम्मेदारी में फर्क होता है ना। एक प्रचारक का दायित्व है कि वो भक्तों की देखभाल कर रहे, उन पे अपना दायित्व स्थापित नहीं कर ले, अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर ले, है ना। अगर ये चीज हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे भक्तों से कई तरह की अपेक्षाएं बन जाएंगी, तो जब वो भक्त उन अपेक्षाओं पे पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा, स्वाभाविक रूप से क्रोध आ जाएगा, है ना। सो हमेशा जो प्रचारक हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, रखते हैं लेकिन कई बार क्योंकि भौतिक जगत में इसलिए रजोगुण कई बार हावी हो जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति एक स्वैच्छिक क्रिया है, है ना, इसमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई भक्त ने कोई काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती करो, तुमने कहा था करोगे क्यों नहीं किया तुमने, तुम्हें करना चाहिए मेरे कहने के अनुसार, नहीं, तो वो जो बात इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए जो प्रचारक है उनको बहुत ही धैर्यवान होना चाहिए, बहुत धैर्य रखना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। जनरली एक जो अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें सेवा दी ना जाए, सेवा मांगी जाए, है ना। तो जब सेवा दी जाती है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब सेवा मांगी जाती है तो उसमें सेवा लेने वाला भी खुश रहता है और सेवा देने वाला भी खुश रहता है, नहीं। जैसे हम प्रभुपाद के उदाहरण से दे सकते हैं, प्रभुपाद ने किसी को कभी सेवा सामने से जाकर नहीं दिया। जब इस्कॉन की प्रभुपाद स्थापना कर रहे थे, जब हिप्पियों के बीच में रह रहे थे, तो प्रभुपाद बहुत सारे लोगों के लिए खुद प्रसाद बनाते थे और उनको खिलाते थे, फिर क्योंकि उनको वैष्णव सदाचार नहीं था, उन लोगों को पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो खाया छोड़ के भाग गए, नहीं। और तो प्रभुपाद जूठे बर्तन साफ करते थे, फर्श धोते थे, बर्तन मांजते थे, सारे काम प्रभुपाद 70-71-72 साल की आयु में कर रहे थे खुद। और प्रभुपाद ने किसी को कभी नहीं कहा कि यार जरा ये भैया ये प्लेट वहां पे रख दो या जरा ये सब्जी काट दो, प्रभुपाद ने किसी को नहीं बोला, बल्कि प्रभुपाद खुद जाते थे बाजार में मसाला खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए। तो फिर एक भक्त एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा यस ऑफ कोर्स, हाँ आप ये काम कर सकते हो, मैं तो आपकी वेट कर रहा था, है ना। सो प्रभुपाद ने कभी भी सामने से किसी को जाकर नहीं बोला। प्रभुपाद बहुत सारी चीजें थी करने वाले, लेकिन प्रभुपाद वेट कर रहे थे, है ना। तो हमें प्रभुपाद के उदाहरण को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें भक्तों की देखभाल करनी चाहिए और वेट करनी चाहिए कि कब कब ये भक्त सामने आएगा और कब सामने से आके बोलेगा कि मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे सेवा का अवसर दो, है ना। हम सबकी ऐसी ही चेतना होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। और जब हम स्पेशली जब हम प्रचारक बनते हैं, जब हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें लोगों को अपनी कसौटी पे नहीं कसना शुरू कर देना चाहिए, हमें उस भक्त के अनुसार देखना चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि सपोज हम रोज सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, रोज सुबह 4 बजे उठ के हम लोग भगवान का जप करते हैं। तो सपोज कोई आदमी 6 बजे उठ रहा है या 7 बजे उठ रहा है, बोले अरे यू आर फॉलन, तू क्या भक्ति कर रहा है यार, 7 बजे उठता है, मुझे देखो मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। तो हमने तुलना करनी शुरू कर दी। हमें ये सोचना चाहिए कि वो 10 बजे उठने वाला जीव था, अभी 6 बजे पे आ गया तो बड़ी बात है नहीं। वो अगर हम उसको उत्साह देते रहेंगे, वो 4 बजे पे भी आएगा वो, लेकिन टाइम लगेगा। इतने जन्मों की, इतने सालों की कंडीशनिंग है, इतने सालों से बंदा, इतने जन्मों से एक काम करता चला आ रहा है, अब वो एक सेकंड में नहीं बदल जाएगी चीज़ें, टाइम लगेगा। और उस टाइम के दौरान, उस समय के दौरान, उस अवधि के दौरान हमें वेट करनी पड़ेगी, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसको उत्साह हमें देना पड़ेगा कि ठीक है आप कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि छोटी सी चिंगारी दे उसको हवा दो, हम अच्छी भली आग जल रही होती है उसमें पानी डाल देते नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं छोटा सा कोई गुण दिखाई दिया उसको हवा करना शुरू कर दो ताकि वो आग बढ़ जाए। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भक्तों को क्रिटिसाइज नहीं करें, उनकी आलोचना नहीं करें, उनको क्रोध ना करें उनके ऊपर, है ना। सो भक्त जो है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रेम से उनको कंट्रोल करें, डांट डपट के। हालांकि डांट के पीछे भी भावना प्रेम की है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उसको अभी नहीं समझ पा रहा तो बेकार में उसको परेशान करने की क्या आवश्यकता है ना। जब तक आप पूरी तरह से ये निर्णय नहीं कर लो कि ये व्यक्ति अब डांट खाने के लिए तैयार है, तब तक भक्त को, जो प्रचारक है उसको, जिन लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, कभी उनको डांटना नहीं चाहिए या गुस्से से नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को गुस्सा करना चाहिए जो, जिनके बारे में उसे विश्वास है कि हाँ ये समझते हैं कि ये जो मैं अगर गुस्सा करूँगा तो ये प्रेम के कारण है गुस्सा, ये उनको भक्ति में और जल्दी ऊपर उठाने के लिए गुस्सा, बजाय कि कोई ईर्ष्या से या किसी और भाव से। तो अगर कन्फ्यूजन है कि वो भक्त मेरी बात समझ पाएगा, मेरे गुस्से को, या नहीं समझ पाएगा, तो बेटर ये है कि आप गुस्सा नहीं दिखाओ, धैर्य रखो, है ना। इसलिए एक जो प्रचारक है बहुत मैच्योर होना चाहिए, उसको टाइम लगता है इसमें भी। जब हम प्रीचिंग शुरू करते हैं, कोई भी भक्त प्रीचिंग शुरू करता है, तो शुरू में छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ ही जाता है, है ना। फिर धीरे 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 जैसा परिपक्व हो जाता है भक्त, मैच्योर हो जाता है, वैसे वैसे वो गुस्सा करना छोड़ देता है। उसको पता होता है यार वो अपने हिसाब से ही चीज़ें, टाइम लेके चीज़ें ठीक होंगी, मेरे बहुत ज़्यादा इसको भगाने पर भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको दौड़ाऊँगा तो ये ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचेगा, रास्ते में गिर जाएगा, जिस स्पीड पे चल रहा है वो स्पीड भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए वेट करते हैं जो मैच्योर डिवोटीज होते हैं, वो वेट करते हैं कि कब जो भक्त हैं ये अपने आप से और सेवाओं के लिए आगे आएंगे, है ना। वो उनको प्रेशराइज नहीं करता, बोलता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मैच्योर डिवोटी है वो कभी भी सामने वाले को ये नहीं बोलेगा यार तुम कर क्यों नहीं रहे, इतना टाइम हो गया तुम्हें और वेट करना चाहिए, है ना। अभी कोई भक्त अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है अभी वो उसके लिए तैयार नहीं है, अभी टाइम लगेगा, है ना। तो उसको टाइम देना चाहिए। हाँ, हमने भी टाइम लिया था, हमने भी पहले दिन से ही 16 माला और दुनिया भर की सेवाएं हमने नहीं ले ली थी, धीरे 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 हम लोग भक्ति में आगे बढ़े थे और हमें भी किसी ने हमारे लिए भी प्रतीक्षा की थी, हमारे प्रति भी धैर्य रखा था, तो हमें भी वो कर्ज चुकाना चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि भक्तों को अधिक से अधिक समय दें। कोई काम थोड़ा सा लेट हो रहा है या बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता, काम तो हो रहा है, लोग भक्ति में जुड़े तो रह रहे हैं, माला तो हाथ में पकड़ी हुई है, आप गुस्सा करोगे माला छोड़ के भी भाग जाएगा नहीं, तो उसका क्या फायदा है। तो हमें बहुत ही धैर्य से प्रचार करना चाहिए और जो भी भक्त बन रहे हैं हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी संपत्ति है। जो भी भक्त है, चाहे अच्छा भक्त है चाहे कम अच्छा भक्त है, चाहे बहुत समर्पित है या कम समर्पित है, सभी के सभी प्रभुपाद की, गुरु की, कृष्ण की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो आशा ये की जाती है कि आपस में लड़ाइयाँ कम होंगी और लोग आपस में अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।